ओम शांति। एक बार हम सब मिल करके इस ओम शांति को उस रीति से बोलेंगे जिस रीति से यज्ञ में शुरू में, जैसा हम सब ने सुना है, साकार बाबा के साथ सब बच्चे मिलकर बोला करते थे। ओ महामंत्र ओम शांति का जो है, वास्तव में ये सभी ज्ञान का आधार है। ये हमारा पहला लेसन भी है और आखिरी लेसन भी है। पहले दिन जब कोई भी जिज्ञासु आते हैं, उन्हें क्या बताया जाता है? ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा हूँ और शांत स्वरूप। तो आत्मा का पूरा ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वो ज्ञान होता है थ्योरेटिकल। और ये अंतिम पाठ भी है, क्योंकि जब इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जब इसमें बिल्कुल स्थित हो जाते हैं, तो आज का जो विषय है वो सार्थक हो जाता है। मन जीते जगत जीत। जैसे पानी होता है, बिल्कुल जब शांत होता है, कोई लहरें नहीं होती हैं, तो क्या होता है, उसके नीचे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, लहरें नहीं होती और अपना प्रतिबिंब भी उसमें अच्छी तरह स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। और जब इस शांति को थोड़ा सा भंग कर दिया जाता है, पानी की छोटा सा कंकड़ भी लेके अगर डाल दिया जाए, तो क्या होगा? लहरें पैदा होने लगती हैं। और जब लहरें पैदा होती हैं, तो अपना प्रतिबिंब भी देख सकते हैं स्पष्ट? नहीं देख सकते। इसलिए ये ओम शांति में स्थित होना, ये भी एक मन जीते जगत जीत का लक्षण है। जगत जीत से भाव क्या है? क्या भाव समझते हैं जगत जीत से? जगत को जीत लिया क्या? सतयुग में भी हम सब होंगे और अभी हैं, तो जगत जीत का भाव है। जगत में जो भी चीजें हैं, क्या क्या चीज है जगत में? मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे भी हैं, प्रकृति है, ये सब चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, ये है जगत जीत। विजय का मतलब क्या है? विजय का मतलब इन पर, इन पर हमारी स्थिति आधारित ना हो। प्रकृति है, पशु पक्षी जीव जंतु, जगत जीत बनने, अर्थात इन पर हम अपनी स्वस्थिति इतनी मजबूत हो कि इन सब को हम कंट्रोल कर सकें, न कि इनकी स्थिति के आधार पर हमारी स्वस्थिति बने। तो इसलिए मन जीते, मन को जीतना, यानी कि बहुत बड़ी शक्ति है मन। और मन इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आधार पर सबको जीता जा सकता है। और पहले जगत जीत बनने के लिए क्या करते थे? हमारे शास्त्रों में क्या उदाहरण है? क्या उदाहरण है? किसी को महाराजा चक्रवर्ती, महाराजा विश्व पर विजय प्राप्त होनी करनी होती थी तो क्या करते थे, यज्ञ रचते थे। तो यज्ञ जब रचते थे और तो बाबा ने भी यही यज्ञ रचा है। क्या नाम है हमारे यज्ञ का? हाँ पूरा बोलो। हाँ बहने बोलो। राजस्व। हाँ राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। ऐसा इतना तो है, शायद और भी इसमें दो चार शब्द हो क्योंकि काफी लंबा चौड़ा नाम है। तो अश्वमेघ यज्ञ राजा रचा करते थे। रामचंद्र जी का तो हम लोगों ने सुना है, उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ रचा था। और क्या करते थे फिर यज्ञ में, क्या करते थे? आहुति, गेहूं तिल जौ आदि आदि, इन सब की आहुति देते थे। तो ये सब चीजों की आहुति के बाद फिर क्या करते थे? अश्वमेघ है ना, यज्ञ बोलते थे उसे। तो राजा जो है घोड़ा छोड़ देता था, घोड़े पर एक तख्ती उसके गले में टंगी होती थी कि जो भी इस राजा की अधीनता स्वीकार करता है वो घोड़े को जाने दे। घोड़ा फ्री होता था, राजा पूरे मतलब उसमें राज्य में जहां कहीं जाए वो राज्य उस राजा के अधीन होते जाते थे यदि घोड़े को पकड़ते नहीं थे। और यदि कोई अधीनता स्वीकार नहीं करता तो क्या होता था, क्या करते थे? युद्ध करो। तो घोड़े के पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी और सामने जो युद्ध करना चाहता था उसकी सेना होती थी। युद्ध भी होता था, जो जीत जाता था उसकी अधीनता दूसरे स्वीकार कर लेते थे। तो इसका भाव क्या है? हम सब भी जगत जीत बनना चाहते हैं ना, या सिर्फ बंबई जीत या उल्लासनगर जीत, इतना ही चाहते हैं? सब जगत जीत, लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इसीलिए बाबा ने भी ये यज्ञ रचा है। और कौन सा घोड़ा छोड़ा हुआ है बाबा ने? हम सब जो यज्ञ रच रहे हैं अश्वमेघ, मन को भी ठीक बताया, मन रूपी घोड़ा। इसलिए भक्ति में तो बोल दिया मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, लेकिन हम सब ने भी ये यज्ञ रचा है। होवनहार महाराजाओं महारानियां जो यहाँ बैठे हैं, और ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा हुआ है। और क्या होता है इसमें? मन रूपी घोड़ा के साथ साथ जो हम होवनहार महाराजाओं की सेना है, कौन सी सेना है हमारी? ये जितने गुण और आत्मा की शक्तियां हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति और जितने भी अशक्तियां, ये सब हमारी सेना है मन की रक्षा के लिए। और ये चल रही है हमारे पीछे पीछे। सामने कौन सी सेना है? माया की सेना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष पर चिंतन पर निंदा आदि आदि। तो कभी उनका पलड़ा अगर भारी हो जाता है, वो युद्ध करते हैं, तो क्या होता है? ये मन रूपी घोड़ा भले कुछ समय के लिए उनके अधिकार में चला जाता है, नहीं तो ये मन रूपी घोड़ा ये जो है ये चल रहा है, और इसकी भी रक्षा करना ये हम सबका कर्तव्य है। अभी हम थोड़े दिन पहले परसों ही वहां से वापस आए, उधर कानपुर गए थे, और कानपुर के पास एक जगह बिठूर, तो अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बोला जब यूपी वाले आते हैं तो उनके टर्न में बाबा ने तीन बार उनकी अव्यक्त मुरलियां उन्होंने बताई। तो साकार बाबा भी कानपुर जाते थे जैसे बम्बई जाते थे, और वहां पर एक जगह है जहाँ ब्रह्मा ने वो बहुत मंदिर है, बिल्कुल गंगा नदी के एकदम किनारे है, और उसे ब्रह्मा मंदिर बोलते हैं कि ब्रह्मा ने वहां कील ठोकी और वहां से पूरी पृथ्वी को नाप लिया। उसे सेंटर ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र स्थान। और साकार ब्रह्मा बाबा ने भी उसको देखा है, और तीन बार बाबा ने मुरलियों में बोला वहां पर कोई ऐसा स्थान बनाओ जिससे कि बहुत सेवा का साधन बन जाए। तो वहीं उसके निमित्त जाना हुआ था और वहां बिल्डिंग बन गई है, के तैयार हो गई है, और वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का म्यूजियम बनने का है। तो वो जो है वहां पर कई चीजों की से प्रसिद्ध है वो स्थान। तो उसमें एक ये भी है वाल्मीकि का मंदिर, और वहां पर वो लवकुश का कि सीता को जब वनवास दिया लक्ष्मण छोड़ के आए, तो वहां पर वाल्मीकि आश्रम बना हुआ है कि वहां पर सीता को वाल्मीकि ने आश्रय दिया था, और वहां पर ही लवकुश का जन्म हुआ। और वहां पर ही एक स्थान है जहां पर बताते हैं कि यहां पर लवकुश ने वो घोड़ा पकड़ लिया था जो रामचंद्र जी ने छोड़ा था, और वहां पर युद्ध हुआ था। और फिर और दूसरे हनुमान मंदिर भी हैं, हनुमान को बंदी बनाकर भक्ति मार्ग की कथा के मुताबिक वहां ले आए थे, तो हनुमान का मंदिर है वहां। वो भी स्थल है कि सीता धरती फटी और सीता उसमें समा गई, आदि आदि जो भी भक्ति मार्ग की। लेकिन वो अश्वमेघ यज्ञ से डायरेक्टली जैसे कनेक्टेड है, ऐसा कथा वहां की माइथोलॉजी बोलती है। तो ये अश्वमेघ यज्ञ जो हमने रचा है, तो मन जीते जगत जीत यानी मन रूपी घोड़ा छोड़ा हुआ है इस अश्वमेघ यज्ञ में, और ये हमारी युद्ध कैसे चलती रहती है और किस प्रकार से ये मन रूपी घोड़े को हमें वश में करते हुए सदा चलना है। और हम सबके सामने एक ही रोल मॉडल है जिसने मन को वश करके जो जगत जीत बन गया, कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा बोलते हैं आप हम सब बच्चे ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है? ब्रह्माचारी, यानी ब्रह्मा के कदम पर कदम। तो इसीलिए किस प्रकार से ब्रह्मा ने मन जीते जगत जीत हो करके कार्य किया, उन बातों को भी कुछ आपस में शेयर करेंगे। तो हमें एक ये भी सौभाग्य है बाबा के साथ रहने का लगभग 7-8 वर्ष, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है कि जब बाबा अव्यक्त हुए, कर्मातीत हुए, कब हुए थे बाबा कर्मातीत? है? कौन सी तारीख को? 18 जनवरी और कौन सा ईयर? 69। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो उससे 2 दिन पहले हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, तो यहाँ आ गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की अंतिम कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्रत्यक्ष इन आंखों से देखने का मौका मिला। और जब बाबा ने शरीर छोड़ा, हम यहीं पर ही थे, तो वो स्थिति भी देखने का बाबा का मौका मिला, और साथ ही साथ कैसे बाबा मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीत भी बने, वो भी देखने का मौका मिला। तो बाबा की भी ये यात्रा कब से शुरू हुई थी, मन जीते जगत जीत बनने की कब से शुरू हुई? हाँ, जब से यज्ञ शुरू हुआ। तो बाबा ने उस समय ये महसूस किया कि मन जो है ना, वास्तव में भक्ति में भी मानते हैं, बड़ा भाग जाता है, इधर उधर उधर चंचल है, क्या करें। तो बाबा ने क्या किया, मन को एक पत्र लिखा, उसकी एक कॉपी हम लोगों को, पुराने भाई बहनों को दी गई थी, और बाबा ने मन को ऑर्डर दिया। क्या लिखा बाबा ने मन में? बाबा ने मन को लिखा पत्र कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन मंत्री होते हुए भी तू बलशाली हो गया और राजा मुझ राजा को तूने कमजोर कर दिया और मैं इतना कमजोर हो गया कि जहाँ तू मंत्री भागता रहा चलता रहा मैं भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा। लेकिन अब मैं हे मन मंत्री अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ और तू मंत्री है, राजा के कहने पर मंत्री को चलना पड़ेगा। अब मैं धीरे धीरे बलशाली हो गया हूँ और तू मंत्री तुझे अब मेरे अधीन होकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से बाबा ने मन को पत्र लिखा और एक दूसरा पत्र लिखा किसे? बुद्धि को। मन और बुद्धि को, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे और मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं शक्तिहीन हो गया, मैं भी तुम्हारे कहने पर चलता रहा। मन मंत्री है, बुद्धि क्या है? सेनापति, और संस्कार है सैनिक। देखो बाबा की एनालिसिस, मन मंत्री, बुद्धि सेनापति और संस्कार सैनिक। तो हे मन और बुद्धि, मंत्री और सेनापति, तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया, अब मैं शक्तिशाली हो गया हूँ और तुम्हें मेरे कहने पर। तो बाबा ने अपनी सीट पर, सोमान की सीट पर स्थित होके मन बुद्धि को ऑर्डर दिया। हम सब भी चाहते हैं मन जीत को जीतना, मन को शक्तिशाली करना, लेकिन फिर भी क्या होता है, चाहते तो हैं लेकिन मन सदैव हमारे कहने पर नहीं चलता। कभी मन बहुत भाग रहा है, बुद्धि में बहुत बातें हैं, हम चाहते हैं समेटने की शक्ति आए, समाने की शक्ति आए, बाबा को याद भी करते हैं, थोड़े समय वो शक्ति की महसूसता करेंगे, फिर मन भाग जाएगा, फिर उन्हीं बातों में विचरण करने लगेगा जिनसे हम निकलना चाहते हैं, फिर हम पकड़ के लाएंगे लेकिन फिर मन भाग जाता है। क्यों? बाबा का मन कंट्रोल में हो गया, लेकिन अभी तक इतने सालों से हम सब लोग, अलग अलग सालों से, मुझे ही 50 साल से ज्यादा हुए जैसे बहन जी बता रहे थे, अभी तक हम भी क्लेम नहीं कर सकते कि मन हमारे वश में। बाबा ने भी जैसे ये लिखा, लेकिन उसके लक्षण भी होने चाहिए। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी एक तो लक्षण हो कि ये है, मेथोडोलॉजी हो किस प्रकार से कर रहे हैं, और उसके चिन्ह होने चाहिए कि हाँ ये चिन्ह है जिससे हम कह सकते हैं कि मन हमारा वश में हो गया। तो पहली बात कि हम चाहते तो हैं ये, लेकिन मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम सोमान में स्थित रह के मन को ऑर्डर नहीं करते। लौकिक में भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, बड़ा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर भी है चाहे, अभी मानो मनमोहन सिंह जी को अगर वो कुछ भी ऑर्डर करें कहीं पर भी जाए तो कोई उनकी बात मानेगा? मतलब देश की बात, बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अभी सीट पर नहीं है। तो ऐसे ही जब हम सीट पर नहीं होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर या इलेक्शन वाले हो, कोई हार जाता है, ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह पोस्टिंग, तो जहां पहले था वहां पर जाके ऑर्डर करे कोई बात नहीं मानेगा। तो ऐसे ही मन को हम पहले सोमान में, जैसे बाबा ने सोमान में स्थित करके फिर मन को ऑर्डर दिया, मन उन बाबा की बात को मानकर, बस बाबा धीरे धीरे मन जीते, जगत जीत बनते चले गए। उसकी पहचान क्या है? मन हम जीतते जा रहे हैं, हर चीज का, जैसे बुखार आया थर्मामीटर से पता चल जाएगा बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, रेस्टलेसनेस है, ब्लड प्रेशर नापा, ब्लड प्रेशर से पता चल जाएगा हाई है या लो है, हाँ भाई ठीक नहीं है तबीयत, तो उसकी दवाई ले लेंगे या जो भी उसका इलाज करें। ऐसे ही मन हमारा कंट्रोल होता चला जा रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? तो बाबा को हमने देखा कि पहले बाबा से जब हम मिला करते थे शुरू में 62-63 में, तो बस बाबा कहते थे बच्चे हाँ बोलो क्या पुरुषार्थ है। हिस्ट्री हॉल था, हिस्ट्री हॉल में 3 संदली हैं, बीच की संदली बच्चों के लिए रहती थी, एक पे बाबा एक पे मामा बैठते थे, और जब भी कोई पार्टी आती थी एक एक पार्टी वाला आके अपना अनुभव वगैरह सुनाते थे, और फिर कि हमारा ये लक्ष्य है और ये हम एक सप्ताह जितने दिन रहेंगे ये प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, और जाने से पहले भी एक दिन वहां बैठ के हर एक बताते थे हम क्या लेकर के जा रहे हैं। और बाबा मामा को जो भी, और मामा जब चले गए उसके बाद बाबा ही मोस्टली तो वो गाइडेंस दिया करते थे। तो इस रीति से बाबा पहले पूरी बात सुना करते थे कि बच्चे आते थे प्रश्न करते थे और फिर बाबा उसका समाधान करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बस 66-67 में मिलते थे बाबा से, बस बाबा से मिले बाबा को एक दो लाइन ही सुनाते, बाबा कहते थे हाँ बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने कहना ही शुरू किया है, तो बाबा कहते थे नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा उसका समाधान देते थे। लेकिन 17-18 जनवरी को जब हम यहाँ पर थे तो हमने क्या देखा, बड़ा ही आश्चर्य कि बस बाबा के सम्मुख 2 दिन में हमारा 7 बार बाबा से मिलना हुआ, क्योंकि साकार बाबा रहते थे, कभी आंगन में मिलते थे, कभी कमरे में, कभी झोपड़ी में, कभी हिस्ट्री हॉल में, कभी बाबा के साथ भोजन करते थे। उस समय सर्दी का मौसम था तो हिस्ट्री हॉल की छत पर बैठ के वहां पर भी ब्रह्मा भोजन वगैरह करा करते थे। तो इस रीति से बाबा से मिलना हुआ और बड़ा आश्चर्य देखा मन जीते का प्रमाण कि बस बाबा दृष्टि देते थे, थोड़ी भी दृष्टि दी और अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चाहे सेवा का प्रश्न हो, चाहे स्वस्थ पुरुषार्थ का हो, चाहे धारणा से संबंधित हो, कोई भी प्रश्न, बस बाबा थोड़ा दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो ये कर लो ऐसा हो जाएगा, बस इसके बाद बाबा फिर अपने 100 पुरुषार्थ में तल्लीन। तो मन जीते जितना हम मन को जीतते जाएंगे, दूसरे की मन की बात को एकदम परखते जाएंगे, और परखेंगे नहीं उसकी बात को समझ करके उसका समाधान उसको दे देंगे, और वो आत्मा समाधान स्वरूप होके चली जाएगी और बिल्कुल उसका स्वरूप बदल जाएगा। जो बाबा ने कहा है ऐसा हो कि रोती हुई आत्मा आए आपका स्वरूप देख के, हमारी ऐसी कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप मन जीते जगत जीत की स्थिति हो, उसके मन के सारे प्रश्नों के समाधान हो जाएं, रोती हुई आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति का अनुभव करती। और वो कब होगा, जब हमारे अपने मन में कोई भी संकल्प नहीं होगा, दूसरे के संकल्प को पढ़ करके और उसका समाधान हम तब कर सकेंगे जब हम खुद मन जीते स्वरूप में होंगे, इच्छा मात्रम अविद्या के स्वरूप में होंगे। एक तो ये लक्ष्य हम लोगों का होना चाहिए जो बाबा ने कहा है। आपके कितने खजाने हैं हमारे पास, वैसे बहुत खजाने हैं, लेकिन बाबा ने विशेष 2 खजानों का, कौन से 2 खजाने, समय और संकल्प। तो समय और संकल्प दोनों इंटरलिंक्ड हैं। संकल्प रूपी खजाना यानी मन जीते, जिसने मन जीता होगा उसका संकल्प रूपी खजाना वेस्ट नहीं होगा, कोई भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलेगा, तो वो होगा। और जब संकल्प वेस्ट नहीं होगा तो समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस रीति से बाबा को जो देखा, ये थोड़े समय का नहीं, शुरू से जो हमने बताया, भले जिन्होंने देखा होगा 1936-37 से उन्होंने तो देखा, लेकिन हमने जो 1961-62 से 69 के बीच में अनेक बार, कि कैसे बाबा पहले पूरी बात सुन के वो, और अंत में ऐसी स्थिति आ गई एक अक्षर भी सुने बिना बाबा पूरी बात समझ जाते। एक तो ये लक्ष्य देखा, हम भी अपने को चेक करते चले कि मेरी कितनी इच्छा मात्र अविद्या स्वरूप की स्थिति होती जा रही है, और जो भी आते हैं हमें कोई उनको जजमेंट देने की जरूरत नहीं, बताने की, लेकिन हरेक के भावों को हम तुरंत समझ जाएंगे जिस स्थिति से जो आता है, और उसके भावों को समझ करके उसके मन के समाधान प्रश्नों का कर सके। एक तो ये स्थिति, और साथ में क्या देखा बाबा का कि मन जीते जगत जीत, एक तो बाबा ने ये करा मन के लिए, पत्र लिखा और पत्र के बाद उसका, इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं हम बच्चों को भी, मन जीते जगत जीत के लिए हम लोगों को रोज क्या करना चाहिए, रोज इन सूक्ष्म कर्मचारियों की दरबार लगाओ, तो हमें पता चलेगा रात को सोने से पहले या जो भी समय निश्चित करें, मन बुद्धि संस्कार देखें सारे दिन में इतना इन्होंने क्या क्या उल्लंघन किया, हमें मालूम है क्या मर्यादा है सोचने की, क्या वाणी की मर्यादा है, क्या कर्म की, क्या व्यवहार की, तो हरेक का पता चल जाएगा, हाँ आज इतनी बार मन ऐसी जगह भागा जहाँ के लिए हमारे ज्ञान या बाबा की छुट्टी नहीं है, आज ऐसा मुख से बात निकल गई जो ज्ञान की मर्यादा के विपरीत है, तो जब इनकी दरबार लगाएंगे तो पता चलेगा और धीरे धीरे फिर उन पर नियंत्रण होता जाएगा, इसीलिए एक ये आवश्यक है। और क्या आवश्यक है साथ में, जब बाबा ने ना जब आए, लक्ष्य जब बहुत क्लैरिटी होती है, क्लियर, हम सब ने सुना है ना कि ज्ञान हुआ, पहले तो ज्ञान था नहीं यज्ञ में इतना ज्यादा, बस सब ब्रह्मा बाबा को ही सब भगवान के रूप में देखते थे, बाबा को देखा ध्यान में चले जाते थे, बस कृष्ण का नारायण का स्वरक का साक्षात्कार हो रहा है, नाचते गाते थे, खुश हो जाते थे, तो सबने सुना भी होगा गुलजार दादी जब छोटे ही थे 9 साल के, एक बार ध्यान में गए तो उन्होंने वहां सूक्ष्म वतन में क्या देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, तब तक ये सब कोई ज्ञान नहीं था बस बाबा, और तब जब वहां पर देखा बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने मम्मा को आके बताया, मम्मा ने कहा मुझे भी नहीं मालूम वो कौन है, तुम बाबा से पूछना, गुलजार दादी ने जब बाबा से पूछा तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा बच्ची मुझे भी नहीं मालूम कौन है, अगली बार तुम जब ध्यान में जाओ तो उनसे पूछना कि आप कौन हो, क्योंकि आप जैसी शक्ल सूरत वाला तो बाबा हमारे साथ वहां पर है, तो अगली बार जब गुलजार दादी गई उनसे पूछा तो उसने बताया, क्या बताया होगा, मैं उसी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप, तो बस दादी ने आके, जब गुलजार दादी बच्ची थी 9 साल के, जब बताया बाबा को, बस उस दिन से बाबा को ये हो गया मुझे इस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। तो क्या बात चल रही थी, तो बाबा को ने पूछा, अच्छा क्या अंतर है उस ब्रह्मा में और इस ब्रह्मा में, तो बताया बाबा शक्ल सूरत तो सब बिल्कुल आप जैसी है, लेकिन उनमें लाइट तेज बहुत है और बिल्कुल जैसे रुई रुई के फरिश्ता जैसा ऐसा लग, तो बस उस दिन से बाबा के माइंड में ये क्लैरिटी एकदम आ गई कि मुझे ऐसा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा तो सतयुग में बनेंगे वो तो अल्टीमेट लक्ष्य है ही, लेकिन इस संगम युग का यहाँ का हमारा लक्ष्य ये रहे ऐसा मुझे हल्का फरिश्ता, तो दूसरा ये हम लोगों ने भी अपना लक्ष्य, और हम सभी का सूक्ष्म शरीर जैसे सूक्ष्म वतन में है, और इमेजिन करें, इसीलिए बाबा पहले देखो दादियों को ना क्या कहते थे कि एक ये अपना संगम युगी फोटो खिंचवाओ, एक डबल ताजधारी फोटो खिंचाओ, और उसमें बस हम ऐसे बनने वाले हैं, तो इस रीति से हम सबको और बार बार उसे देखते रहो, तो लक्ष्य हम लोगों की बुद्धि में होता है लेकिन वो थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। हमेशा एमर्ज फॉर्म में रहे तो क्या होगा कि हमारी व्यवहार में, वाणी में, संकल्प में, वृत्ति में, दृष्टि हर एक में वो ही लक्ष्य जैसे आता रहेगा। वही कुछ दिन से बाबा की वो सिविलाइज्ड की जो मुरलियां भी चल रहे हैं ना, इसीलिए वो क्यों, क्योंकि हमारा वो लक्ष्य जानते हैं फिर भी भाई भाई की उतनी दृष्टि पूरी बनी रहे क्योंकि वो मर्ज्ड फॉर्म में हो जाती है। और बाबा ने ये बताया, और इसके लिए क्या करना है, धीरे धीरे पहले हमें अपने लेवल पर ही जो स्वस्थिति है वो हमारा, हमारी मजबूत होती चली जाए परिस्थितियों पर। अभी क्या होता है, परिस्थिति ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और वो हमारी स्वस्थिति को पर प्रभाव डाल देती है। कई मानो किसी की मृत्यु हुई, शमशान घाट में गए या कुछ सन्नाटा और सब ऐसा होता है तो हमारा मन में भी वही उदासी का भाव वैसा, यानी परिस्थिति ने स्वस्थिति पर डाला। कहीं पर रोने का वातावरण है वैसी स्थिति, कहीं खुशी का वातावरण है वैसी स्वस्थिति बन जाती है। तो बाबा क्या चाहता है, हमारी स्वस्थिति इतनी पावर, और बाबा में क्या वो बात को एक एक मिनट में झलकती थी वो बात। अब बाबा इतनी उम्र के थे, खांसी कई बार बाबा को आती थी तो बस खांसते खांसते कई बार ऐसा लगता था बाबा को जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, आंख भी गीली हो जाते थे। तो जब ऐसी स्थिति, फिर क्या, दूसरे ही क्षण बाबा के नीचे हिस्ट्री हॉल में भी देखा होगा ना आपने, बाबा के पास वही ट्रांसलाइट का कृष्ण का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का, बस बाबा के देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है और व्याधियां होती रहती हैं, हिसाब किताब चुकतू होते हैं, बस कल ऐसा दुनिया आएगी, नई दुनिया, बाबा जैसे विष्णु कृष्ण ये बनेगा, कोई व्याधि नहीं होगी, सब प्रकार के सुख, यानी कि अपनी स्वस्थिति को बाबा इतना मजबूत कर देते थे, प्रत्यक्ष दिखने लगता था खांसी बंद और बाबा का चेहरा एकदम ऐसा खिला हुआ हो जाता था बिल्कुल जैसे खांसी थी नहीं। तो परिस्थिति आई, कुछ सेकंड के लिए उसका प्रभाव दिखा, लेकिन स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली कि वो परिस्थिति को विदा कर दे। ये चेकिंग भी हम अपने अंदर करते चले कि परिस्थितियां तो संसार में तन मन धन समय संबंधों की, व्यवहार की, व्यवसाय की, परिवार की समस्याएं कुछ ना कुछ तो आएंगी, आनी भी चाहिए, लेकिन वो हमारे ऊपर लास्टिंग प्रभाव न डाल सके, हमारी स्वस्थिति ऐसी हो, क्लैरिटी हो माइंड में, हाँ बैठे बस बाबा से वो टच हो, वो लाइन ऑफ एक्शन होगा, बस वो परिस्थिति एकदम बदल जाएगी। एक ये स्थिति होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सातवां, जितने जितने हम मन जीते जगत जीत, क्योंकि समस्याएं तो आती रहेंगी, हाँ, लेकिन हमारी अंदर बाबा ने कहा है ना, सभी मेरे ब्राह्मण बच्चे जो है ना, उनकी जो दो प्रकार की नजरें हैं, कौन सी, एक पास की और एक दूर की, कौन सी तेज है कौन सी कमजोर, कई बार बाबा कहते हैं ना, दूर की तेज, यानी दूसरों के कमी कमजोरियां जल्दी दिख जाती हैं, अपनी कम दिखती हैं। तो बाबा अभी क्या चाहते हैं, एक्चुअली इसमें ये होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति ने भी बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है, कौन सा, एक है सिद्धांत जियो और जीने दो। हम क्या है, दूसरे को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं, बस जब वो कोई भी हमारी इच्छा से, बाप बेटे को, सास बहू को, बहू सास को, भाई भाई को, बस बड़ा ऑफिसर छोटे अपने सबऑर्डिनेट को, और इस रीति से जब हमारी इच्छा से वो नहीं चलता तो क्या होता है, हमारी स्थिति भी डावाडोल हो जाती है। सारा जियो और जीने दो, एक ये सिद्धांत है। इसीलिए अगर हम चाहते हम निर्विघ्न होके चलते रहें, जिसे बाबा न्यारा और प्यारा कहता है ना, तो इसके लिए ये है, हाँ हमारा फर्ज है, हमारे जो अंडर में है, बेटा है, बच्चा है, या आपस में जो संबंध, उनको एक बार गाइडेंस दे देना, भाई हमारे विचार में ये सही है ये गलत है, बाकी अगर वो फॉलो नहीं करता, वैसा नहीं होता, उसमें हम अपनी स्थिति को डावाडोल न करें। तो इसी इससे क्या होगा, बहुत स्थिति न्यारी और प्यारी रहेगी। और इसी ने बाबा ने कहा अभी बच्चों को ना परीक्षाएं तो आएंगी, प्रॉब्लम तो हम अंत तक आनी है, विघ्न आएंगे, समस्याएं आएंगी। हाँ, विघ्न और माया में क्या फर्क है? विघ्न भी आते हैं और माया भी आते हैं, क्या फर्क है? बड़ा सिंपल, क्या है? विघ्न जो है वो बाहर से आता है, माया अंदर से आती है, ये फर्क है। विघ्न के स्थूल रूप होते हैं अधिकतर, माया के सूक्ष्म रूप होते हैं। मानो उदाहरण के तौर पर आपने ना भाई सुबह तैयार होके निकले, आज गुरुवार है, चलो भोग का दिन है, पहुंच जाए हम, निकले बाहर, निकले तो आपका स्कूटर या कार जिसमें जाने पंचर है मानो, अब ऐसी स्थिति आ गई, तो ये तो हुआ विघ्न, ये माया नहीं हुई। लेकिन इसके बाद जो अंदर में प्रश्न पैदा हो रहे हैं, कमजोरी आ रही है, चलो आज घर में ही क्लास कर लेते हैं, एब्सेंट हो जाए या जैसे भी, वो फिर माया को जन्म दे देती रहे कमजोरियां। तो इसीलिए एक ऐसा अपनी स्थिति होनी चाहिए, विघ्न को इसीलिए बाबा ने कहा है कि माया को पहचान करके उसे क्या करो, दूर से ही भगा दो। देखो एक भगाना होता है, एक दूर से भगाना, कई बार बाबा ने कहा है, क्योंकि अगर वो आ गई उसमें प्रभाव, जब कोई कमजोरी आती है ना मन में, आप देखो अज्ञान काल की कोई काम से संबंधित कमजोरी है तो आएगी, हम पहले संकल्प को आने देते हैं, मन में झंझनाहट सी होती है, मन के अंदर गुदगुदी सी होगी, उसे आने देंगे एक बार दो बार तीन बार, और उसे लाइटली ले लेते हैं। और जब वो बहुत समय तक वो अपना प्रभाव फिर डाल देती है, कमजोर कर देती है, जब उसका स्वरूप ऐसा हो जाता है कि वो हमें परेशान, तब जाके हम चेतते हैं और तब जाके फिर हम वो करना चाहते हैं, तो इतना टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और उसके बाद उसे भगाना भी मुश्किल हो जाता है, वो संस्कार बन जाता है। इसीलिए जब भी कोई कमी कमजोरी आए मन में, पहले मन में ही आती है, तो उसे दूर से पहचान के ही उसको वहीं स्टॉप कर देंगे, तो क्या होगा, वो वहीं हो जाएगी, नहीं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी घुस जाएगी। एक कॉन्शियस माइंड है जो जागृत अवस्था, एक सबकॉन्शियस माइंड और जागृत अचेतन मन, वो बहुत बहुत शक्तिशाली होता है। चेतन मन तो 90-10% ही होता है, 90% हमारा अचेतन मन होता है जिसके आधार पर वृत्ति बनती है, और इसीलिए वो वृत्ति हमारी ही शक्तिशाली चाहिए। चेतन मन तो जब चाहे शक्तिशाली कर लेंगे, क्योंकि हम चेतन हैं, उसमें मन के अंदर चेतन में विचार, लेकिन अचेतन मन में स्वप्न रूप में, संकल्प रूप में अचेतन, और उन वृत्ति के रूप में कोई पुरानी बात जिससे अभी संबंध भी नहीं कुछ, वो पुरानी बात भी आ जाती, इसका मतलब वो वृत्ति में बहुत गहरी घुसी हुई है। इसीलिए ये देखते चलना है कि वृत्ति से भी हमारा वो हो, और ये तब होगा जब हम माया को दूर से ही भगाने का, क्योंकि सूक्ष्म में वो आई, हमने उसका थोड़ा पालना कर दी, तो बस वो माया वृत्ति के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में घुसती चली जाएगी, और फिर जो बाबा चाहता है अंत में मेरे सिवाय और किसी की भी याद न रहे, इसीलिए कहा है अंत मते सोगति का कह, हमारा सारा पुरुषार्थ उस अंतिम क्षणों के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण इस तन से निकलेंगे, उस समय और कोई भी याद ना आए, भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान, जैसा ब्रह्मा बाबा को भी देखा 18 जनवरी को हमने देखा, बस बाबा ने मुरली चलाई, अंतिम मुरली हिस्ट्री हॉल में, हम भी सामने बैठे हुए थे, दादी जी बैठे हुए थे, बहुत थोड़े ही 15-20 लोग ही थे, तब तो कम ही होते थे, कोई बाहर की पार्टियां भी नहीं थी, तो बस बाबा ने मुरली चलाई, और उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न एक बार भी कोई बाबा को कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, गला साफ करने की, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर के सारे कर्म भोगों के ऊपर ना हमारा योग बल जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। एक बार भी कोई व्याधि नहीं आई, कोई बाबा की अंतिम साकार मुरली यही ओम शांति भवन में जो ऑडियो विजुअल सेक्शन है वहाँ कैसेट मिलती है, 18 जनवरी की अंतिम साकार मुरली की सीडी या कैसेट मांगेंगे वहां मिल जाएगी। तो उसे देखेंगे एक बार भी नहीं तो अक्सर करके बाबा को कई कफ साफ करने की, गला साफ करने की, खांसी आदि की समस्या से रूबरू होना पड़ता था। तो ये इस रीति से एक ये देखें अंत में हमें जैसा बनना है भीष्म पितामह की तरह, और इसीलिए बाबा मुरली चला के फिर अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, उस समय बोले, यानी कि बाबा को आभास हो गया कि बस बाबा मुरली चला के उठे, खड़े हुए, बच्चों को दृष्टि देने लगे। फिर बस बड़े ऐसा बाबा का चमकता चेहरा, फिर एक कदम बढ़े, फिर घूमे, फिर बाबा दृष्टि देने लगे, फिर एक कदम थोड़ा गए, बस हिस्ट्री हॉल में भी बाहर तक जाते जाते बाबा 3-4 बार रुके। वो क्यों? क्योंकि बाबा को तो आभास हो गया था ये साकार शरीर के द्वारा ये मेरा अंतिम मिलन है। इसीलिए बाबा हर बच्चे को वो शक्ति देते हुए अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। और ये आवश्यक है हम में से हरेक के लिए इच्छा मिटती हो। क्यों? जाना तो है ही है, लेकिन अगर हम प्रकृति के वश हो के भूकंप आया और बिल्डिंग गिरी, उसके जो बाबा ने कहा ना ये 5 तत्व की हलचल, बाढ़ आ गया एकदम सडनली, जो क्लाउड बर्स्ट होता था उत्तराखंड में, क्या हुआ 2 मिनट पहले तक कुछ नहीं मालूम और एकदम बाढ़ आई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और 3-3 तत्व ने अपना जलवा दिखाया, लैंडस्लाइड हुआ और हजारों लोग खत्म हो गए। तो इसीलिए प्रकृति हमारी मृत्यु का कारण न बने, ये इसके लिए ये आवश्यक है हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ के जाए। और जितना इच्छा से शरीर छोड़ेंगे उतना क्या होगा, बस हाँ बाबा अब मैं आपके पास, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, अच्छा बच्चे, बाबा छुट्टी लेता विदा, कमरे में गए, दादी के हाथ में हाथ जैसे सुना और देह त्याग करा। अंत मते सो गते तब ही होगी, उसी पर ही सारा आधार है। और क्यों, जैसे लौकिक जिंदगी में भी क्या होता है, जो नौकरी करते हैं गवर्नमेंट या दूसरे, उन्हें मालूम है कि जब रिटायर होते हैं तो उस समय जो हमारी सैलरी होती है, LPC बोलते हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, उसके आधार पर ही जीवन भर की पेंशन और जो ग्रेजुएटिटी और सारी चीजें की, उसी आधार पर ही बेनिफिट्स मिलते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट पर। ऐसी लास्ट ब्रीथ जो हमारी है उसके, उसमें अगर हमने कहीं पर भी, अगर हमारे किसी संबंधी में, देहधारी में, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, वैभव में थोड़े भी अगर स्मृति आ गई तो बस अंतमते सो गते क्या दुर्गते हो जाती है। इस कारण से ये आवश्यक, इसके लिए पहले यही प्रैक्टिस करते चले और ये ही हमें मन जीते जगत जीत बनाएगा। क्योंकि जैसे होंगे और जगत में सब चीज आ जाती है। बाबा को देखा केवल व्यक्तियों, हर बच्चे को लगता था बाबा से, बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। आओ बच्चे, बच्चों के साथ बच्चा, युवानों के साथ युवान, वृद्ध के साथ वृद्ध जैसा, बिल्कुल बाबा ऐसा लगता था हर एक को, बाबा लव्स मी मैक्सिमम, बस वी आर मेड फॉर ईच अदर। बाबा को हर एक को बाबा से ऐसा लगता था। तो एक तो ये हो कि हमारा भी सबके साथ संभाव हो, ऐसा न हो किन्हीं के साथ बहुत अति मित्रता, किन्हीं के साथ थोड़ा सा मन का भाव ऐसा हो कि सामने से भी कोई आता है जिनसे बहुत मन मिला हुआ नहीं होता तो हम नजर बचा के चले जाते हैं, उनसे बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं, और जिनसे हमारे संबंध मिलते हैं बहुत देर तक, घंटों तक भी बातें करते रहेंगे। बाबा चाहता है हरेक को ये महसूस हो, और तब ये ही है मन जीते जगत जीत का एक ये लक्षण, जैसा बाबा से हरेक को महसूस होता था। और साथ में और क्या कि बाबा ना के साथ हरेक को जब ये लगता था, जब बाबा अपने कमरे में गए उस दिन शरीर छोड़ा, शरीर के बाद मैं तो यही था, हमने दो दिन तक देखा, 18 की रात को शरीर छोड़ा, 18 का रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात बाबा का शरीर रखा रहा, 21 को भी दोपहर के बाद अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन बाबा को इन दिनों में ना कोई इंजेक्शन दिया गया, ना कोई केमिकल लेप वगैरह लगाया गया, लोशन, बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता हुआ रहा। और सबसे बड़ी बात कि शरीर के अंदर वो ऐठन, जो आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है ना कुछ घंटे में ही, बाबा का तो शरीर जो है इतना घंटे तक रखा रहा, तो दिन 24, 48 और 72 घंटे के अंदर तक, 65 घंटे, लेकिन इतना फ्लेक्स। जब बाबा को स्नान करके हम शांति स्तंभ के पास वहां पर ही अग्नि संस्कार हुआ, तो बिल्कुल काफी हद तक बाबा का वैसे ही फ्लेक्सिबल शरीर, बिल्कुल ऐसे ही चमकता हुआ, नहीं तो शरीर काला पड़ जाता है, दुर्गंध आ जाती है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही लगता था बाबा सो रहा है। और उठ के बाबा कहेगा आओ बच्चे, जैसे हमेशा बाबा का चित्र भी एक सामने है ना गेट के, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, तो बिल्कुल वैसा। तो ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, कि हरेक से को ये भासना रहे कि बाबा मेरा है। और साथ ही साथ क्या, बाबा को जब हम लोग मिलते थे ना, तो पहले भी जब भी बाबा को मिले, बाबा दृष्टि देते थे और बस आओ बच्चे यूं करा, बाबा की बाहों में चले जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह होती थी, उस समय न तो कोई ज्ञान नहीं, पहली बार मिलते थे, न कोई आत्मा का बहुत ज्यादा ज्ञान, थोड़ा बहुत जो सप्ताह कोर्स वगैरह किया हो, लेकिन आप जानते हो उसके अभ्यास में तो टिकने में कितना समय लगता है। लेकिन बाबा की शक्ति ऐसी होती थी, आए तुरंत विदेही हो गए, अशरीरी हो गए। और कैसे उसका लक्षण, फिर बाबा बस आधा मिनट बाद, 25-30 सेकंड बाद या एक मिनट बाद, आओ बच्चे, ऐसे बाबा थपथपाता था, आओ बच्चे। तो जैसे हम जबरदस्ती आत्मा, जैसे खिंच के, कोई आत्मा चली नहीं जाती, लेकिन फिर शरीर में, देही अवस्था में, देह अवस्था में आते थे, फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, और बस उसके बाद एक जाता था, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था। तो बाबा को आत्मा का अभ्यास इतना पक्का हो गया था कि जैसे ही बाबा जिस किसी को दृष्टि देता था, भले थोड़े समय के लिए, वो विदेही हो जाता था, आत्मिक स्वरूप में स्थित। तो ये एक प्रॉपर लाइन है, ये हम भी अपने को चेक करके देखते चले हैं कि क्या मैं भी दूसरे को, किसी को दृष्टि देता हूं, या कोई भी आता है हमारे संपर्क में, वो आत्मा भी विदेही हो जाती है, भले थोड़े समय के लिए। जैसे पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, ये रुमाल है, इसको हम थोड़ा फेंकेंगे यूं, तो थोड़ी देर तक ऊपर जाएगा, जब तक इसमें हमने एनर्जी दी है ज्यादा, और जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो गई, फिर से ये पृथ्वी के प्रभाव में आके नीचे आने लगेगा। ऐसे ही कम से कम थोड़े समय के लिए भी हम किसी भी व्यक्ति को विदेही स्थिति का अनुभव ये बाबा में प्रत्यक्ष देखने को मिलता। तो इसमें भी हम अपने को ये चेक करते चलें, जिसको भी दृष्टि दें वो विदेही हो रहा है, अशरीरी हो रहा है। दूसरी बात कि ये जब स्थिति जितनी आती है, और हम अपनी स्वस्थिति से जैसे उसको बदल लें, और ये होगा कब, बाबा ने कहा अभी बच्चों के सामने ना दो पेपर विशेष आने हैं और आते हैं, बाहर के संस्कारों के और संबंधों के, उन सबको तो हमने मेजोरिटी पार कर लिया, तभी तो यहाँ आ गए, लेकिन एक है अपने शरीर का पेपर अंत में, क्योंकि जब आत्मा भी शरीर छोड़ के जाएगी ना, उससे पहले हमें ये अपनी इच्छा से देह में आने का और देह से न्यारा होने का अभ्यास चाहिए। बाबा में ये अभ्यास बहुत पक्का था, बाबा या तो यहाँ अपनी झोपड़ी में मिलते थे, अगर दो तीन लोग होते थे, अगर दो तीन लोग होते थे तो कमरे में ही मिल लेते थे, तब तो बाबा का कमरा बड़ा छोटा था, जितना पलंग है बस उतना ही, पीछे से ही दरवाजा होता था, इधर से सामने से नहीं, बस इतना कोई 6x8 का या 8x8 का सा कमरा, बस बहुत छोटा सा रूम, बाबा का पलंग, बाबा की गद्दी और एक कुर्सी एक मेज, बस इतना ही आता था। बाबा की गद्दी के सामने थोड़ी जगह रहती थी, वहां 2-3 जो मिलने वाले होते थे मिल लेते थे, तो या तो वहां बाबा मिलते थे या झोपड़ी में अगर 5-6, 7-8 लोग होते थे पार्टी, और अगर 15-20 बड़ी पार्टी, उस समय तो ये पार्टी 15-20 की बहुत बड़ी समझी जाती थी, तो हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा बैठे हैं, पार्टी को टाइम दिया है, मानो 10 बजे बम्बई पार्टी मिले, 10:30 दिल्ली पार्टी, 11 बजे कलकत्ता, ऐसे अलग अलग टाइम दिए होते थे। तो बाबा बैठे हैं, टीचर ब्राह्मणी आती थी समय पर और देखती थी, आंख तो खुली है बाबा की, लेकिन बाबा देह से न्यारे हैं, पास भी आ गई फिर भी बाबा को ख्याल नहीं। फिर वो कहते थे बाबा, तो बाबा को थोड़ा सा जैसे एक जर्क, ऐसा नहीं कि कोई ध्यान में बाबा होते थे साक्षात कर, नहीं, जैसे बाबा विदेही स्थिति में होते थे, और जो बाबा ने कहा है कि भाई 5 रूपों का या ऐसे चक्कर हो सकता है, उस स्थिति में बाबा चक्कर लगा रहे हो, तो देह से न्यारे। अच्छा बच्ची आ गए, हाँ हाँ बाबा फलानी जगह से पार्टी, हाँ हाँ ले आओ बच्चों को, बस बाबा उनसे हालचाल पूछना, टोली देना, व्यवहार करना, और फिर बस देह से एकदम न्यारे हो जाए। तो जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, ये अभ्यास बाबा को पक्का था, और ये अंत समय में बहुत बहुत काम देगा। हम अपनी स्व इच्छा से ना, जब शरीर अंत मते सो गते, हाँ जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी मन जीते स्थिति है, शरीर छोड़ रहे हैं, और बस ये तभी होगा जब हमने, जब देह में आने का, देह से न्यारा होने का ये अभ्यास पक्का। तो ये है शरीर की बीमारियों से का पेपर का सामना करने के लिए अचूक दवा, ये अभ्यास बाबा को पक्का था। एक पेपर शरीर का और दूसरा परिवार का पेपर। जितना जितना ब्राह्मण परिवार बढ़ता जाता है, कभी किसी ब्राह्मण की स्थिति अवस्था देखते हैं, अरे ये तो 40 साल पुराने, 35 साल, इनमें भी अभी तक ये विकार है, क्रोध है, ऐसा बात है, तो बस वो देख के हमारी अवस्था भी, जो कम साल के होते हैं ज्ञान में, उनकी डगमग होने लगती है। तो बाबा ने क्या कहा है, क्या कहा इस पेपर को पार करने के लिए, कि एक एक बच्चा जो है बाबा का चुना हुआ है। हमने बाबा को नहीं वो पाया, बाबा को नहीं ढूंढा, भले भक्ति मार्ग में करते, लेकिन जब समय आया बाबा ने हमें चुना है, तो मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, जो वो आज के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी महान है, इसलिए वो बाबा की नजर में आया है, बाबा ने उसे चुना है। तो समझो बाबा जब हमें इतनी ऊंची नजर से देखता है, और ये भगवान का सिलेक्शन है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। और हम कहें कि अरे बाबा आपने फलाने भाई को ये चुन लिया, उसमें तो ये कमी है, ये कमजोरी है आदि आदि, तो जैसे हम भगवान के सिलेक्शन को चुनौती दे रहे हैं, तो कभी भी हम ये ऐसा किसी के लिए ना कहें। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि नाटक है, फिल्म में भी क्या होता है, फिल्म भी कब अच्छी लगती है, वैरायटी हो, भाई हीरो हीरोइन होते हैं, अपना पार्ट करते हैं, कॉमेडियन अपना हंसाने का, विलेन होता है अब लड़ाई झगड़े का, आदि आदि सबके पास, लेकिन अंत में ऑल वेल दैट एंड्स वेल, तो बीच में जितनी वैरायटी, तो ये बीच में हर एक ब्राह्मण के पार्ट की वैरायटी अगर देखने को मिलती है, तो उससे हम हलचल में ना आए। और एक बात ये कि भगवान की सिलेक्टेड आत्मा है, और दूसरा ये वही आत्मा है, उसको 3 काल की दृष्टि से देखें। हर ब्राह्मण परिवार के बच्चे को वर्तमान दृष्टि से देखेंगे, तो वर्तमान उसकी कमजोरी की अवस्था देखने में आएगी, लेकिन अगर ये देखेंगे नहीं, ये बाबा की चुनी हुई डबल ताजधारी आत्मा है, अभी ये पार्ट है, लेकिन ये पुनः फिर डबल ताजधारी और ऐसी बनने वाली है, तो बस उस आत्मा का संपूर्ण स्वरूप हमें नजर आएगा, फिर कोई हमारे मन में भी हलचल नहीं होगी, और वो आत्मा को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमसे मिलेंगी तो वो आत्मा भी सुधरने की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये एक आवश्यकता है अपने को देखने की। तो बाबा को देखा कि जब बस बाबा को शरीर छोड़ भी दिया, बाबा के शरीर में कोई वो नहीं, तो ये प्रकृति जीत का प्रतीक है बाबा का, कि बस ऐसा स्थिति जो ये शरीर के पांच तत्वों को भी बाबा ने वश में कर लिया, उसे जीत लिया। और बाबा अब हम बच्चों को भी चाहता है आप भी एक एक बच्चा प्रकृति जीत बन जाओ। और ये प्रकृति जीत बनने के लिए हमें क्या करना है, बहुत अभी तो समय हुआ, मैं एक बात बस बताऊंगा एक एक तत्व की। मानो हम चाहते हैं, आप तो बंबई वासी हो ना, बंबई या उल्लासनगर वहां तो नहीं, लेकिन मानो जल तत्व है, बहुत अभी भी कभी कभी बहुत हाई टाइड्स वगैरह आती हैं, पता होता ही है तो सब सावधान हो जाते हैं। जब सुनामी सडनली आती है, सडनली कभी हाई टाइड्स आएगी, वो तो बहुत अपने गर्त में बहुतों को संभालेगी सुनामी जैसे आई। तो बाबा ने कहा है जिन बच्चों की भी बुद्धि मेरे साथ होगी, वायरलेस कनेक्शन नहीं, कौन सा कनेक्शन, वॉइसलेस कनेक्शन होगा, तो क्या होगा, उनके पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और वो तत्व, कोई भी तत्व मेरे बच्चों की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसे इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना है। कोई तत्व के कारण अगर हमारी मृत्यु हुई, अभी हम यहाँ बैठे हैं, सडनली अर्थक्वेक आई और ये गिर जाए बड़ी बड़ी बीम और हाहाकार मचे, किसी का फ्रैक्चर हो, ये हो, तो अंतमते सोगति कैसे होगी, फिर तो वही स्थिति बुद्धि में होगी और उसमें शरीर छूट गया, फिर वैसे ही जन्म लेना पड़ेगा। तो इस कारण से मानो ये जल मृत्यु का, तो क्या करना पड़ेगा, पहले भी आप लोगों को बहुत पहले शायद, कि जल जैसा हमें गुण धारण करना पड़ेगा। वैसे बहुत गुण है, लेकिन जल का एक मुख्य गुण क्या है, एडजस्टमेंट। जल जो है, अभी कटोरी में लो कटोरी जैसा, गिलास में लो गिलास जैसा बन जाएगा, थाली में लो थाली जैसा। ऐसी हम हर आत्मा के संस्कारों से अपने संस्कार मिलाते चलें, ये न कहें कि इसके साथ तो बहुत सहज है मिलना, इनके साथ मिलके चलना बड़ा मुश्किल है, एडजस्ट नहीं। हर एक के साथ, जैसा बाबा इतने सारे बच्चे होते थे सबके साथ संस्कार मिलाते हुए चले, तो फिर जल कभी भी हमारी दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। अगर हमारे नेचर ऐसी फ्लेक्सिबल हो, हर एक के साथ मिलके चल सके। ऐसे पृथ्वी की नेचर क्या है, सहनशीलता। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। हर चीज पृथ्वी देती है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसे हम भी दाता बन के रहे, कोई भी हमारे सम्मुख आए ना खाली हाथ ना जाए। फिजिकल चीज की बात नहीं है कि रोटी और अनाज और ये चीज दे, नहीं कपड़ा नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, आदर, प्रेम, सत्कार, सद्भावना, ये सारी वाइब्रेशन, मुख से स्नेह प्यार, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता, ये हम दाता के स्वरूप बन जाएंगे। तो पृथ्वी में चाहे जितनी भी हलचल होगी, जितनी अर्थक्वेक आए, बड़े से बड़ा रिश्टर स्केल पर 9 भी हो जाए, 9.5 भी हो जाए, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि पृथ्वी के साथ हमने अपने संस्कार को मिला लिया। आप खुद सोचना कितने कितने, एक एक में 10-10 गुण है, लेकिन मैं तो एक बता रहा हूं। ऐसी साइक्लोन, बहुत तेज हवा, कभी 300-400, अमेरिका जैसा देश, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, लेकिन प्रकृति के सामने हार मान जाता है, घुटने। कितने बार कोई ये साइक्लोन आते हैं, ये पूरा प्रकृति की हलचल के सामने टेक जाता है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर और बाहर की नेचर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब हम बच्चों की नेचर, हमें प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि इस प्रकृति के साथ तो मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक 84 जन्म जो लेने हैं, इन्हीं तत्वों से निर्मित शरीर में तो लेने हैं, भले नाम रूप अलग अलग होगा हर जन्म में, लेकिन होंगे तो वही पांच तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो इन नेचर के साथ हमारी नेचर ऐसी मिक्स हो जाए, लगे ही ना सबको लगे हाँ इनकी नेचर तो जल की तरह है, इतनी शीतलता, इतनी एडजस्टमेंट, पृथ्वी की तरह दाता की नेचर है, सहनशीलता की नेचर है, वायु की तरह हल्के रहते हैं सदा, कभी भारी नहीं होते, कोई परिस्थिति हो तो जितना साइक्लोन आएगा जितना, कभी भी वो मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसी आकाश तत्व, क्योंकि आकाश मार्ग से आने वाले रॉकेट हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब हैं, ये मृत्यु का कारण बहुत बन सकते हैं। अंत में अग्नि बम होता है, गिरा, आग लग गई चारों, वो तो ये उत्तराखंड में क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट, आकाश मार्ग से वो मृत्यु बरसी, जैसे क्लाउड के रूप में क्लाउड बर्स्ट होगा, इतना पानी सडनली आ जाएगा जो 15 दिन तक बरसता रहे, वो 15 मिनट में वो पानी उतना आ जाएगा तो इस छत से भी ज्यादा एकदम लेवल हो जाएगा, तो सारे डूबेंगे ही उसमें। तो इस कारण से आकाश मार्ग से आने वाली प्रकृति कोई हमारी मृत्यु का कारण न बने, उसके लिए क्या करना है, आकाश जैसी हृदय में विशालता चाहिए, उसमें और बस कुछ नहीं, अंत में हरेक के लिए क्षमा भाव। महान आत्माएं जो होती हैं उनमें एक गुण सबसे बड़ा होता है क्षमा भाव का, तो इसीलिए वो क्षमा भाव का गुण वो धारण करते चले, और इसी कारण से वो कब पता चलेगा, आकाश में सैटेलाइट होते हैं ना, इसीलिए तो हम मोबाइल, टीवी, रेडियो, कोई भी कम्युनिकेशन के साधन है, एक सेकंड में कहीं से कहीं कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, और इस कारण से हमारा कम्युनिकेशन हरेक के साथ हो जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में जिनसे हमारे दिल मिले होते हैं उनसे तो हमारा कम्युनिकेशन बड़ा सहज होता है, जहां दिल की थोड़ी बहुत दूरी है, कटुता है, उनके साथ हम पास रहते हुए भी दूर का अनुभव करते हैं। तो आकाश जैसी विशालता, और अंतिम सूर्य, गर्मी, प्रकाश, ये तत्व है ना, तो उसका क्या है, अग्नि का गुण मुख्य परिवर्तन, ये हर चीज को। तो ऐसे ही हमारा भी ज्वालामुखी रूप ऐसा हो जो बाबा ने कहा है, वो अंतिम बस व्यक्ति रोता हुआ आए, हंसता हुआ चला जाए, जैसा बताया आपको, दुखी आत्मा आए सुख का, हरेक को बाबा के सम्मुख जाते थे और बस बाबा से हमारी इच्छा, ये तो एक नेगेटिव बात हुई, पॉजिटिव यह कि अंत में जब त्राही त्राही होगी, लोग अपने इष्ट देव को याद करते करते हमारे सम्मुख आएंगे, कोई हनुमान का भक्त होगा, कोई राम का होगा, कोई देवी का होगा, कोई कृष्ण का, हम तो एक, हमारे सामने चार भक्त आए, चार अलग अलग इष्ट देवताओं के भक्त, लेकिन हम एक ही होंगे, हमारे द्वारा बाबा उनको उनकी इच्छा के अनुरूप साक्षात्कार कराएगा। जैसा हम लोगों ने सुना भी है यज्ञ में, ब्रह्मा बाबा था तो कृष्ण की आत्मा, कृष्ण का सबको साक्षात्कार होता था, लक्ष्मी नारायण, लेकिन यज्ञ के शुरू में एक सरदार जी का परिवार आता था, सरदार जी थोड़ा एंटी थे, उन्होंने ये सोचा मैं मार दूंगा, छुरा लेके गए, जब अटैक करने ही वाले थे तो क्या हुआ उन्हें, गुरु नानक देव, अब बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन जिसकी श्रद्धा जिसमें होती है, जो जिसका इष्ट देव, बाबा हमारे इस तन के द्वारा उसको उसके ही इष्ट देव का साक्षात्कार कराएगा, तभी तो उसे तृप्ति का और संतुष्टि का अनुभव होगा। उसके लिए बस हमें यही करना है कि तन और मन ये दोनों पवित्र रखने हैं, क्योंकि तन के द्वारा साक्षात्कार होगा और मन जीते जगत जीत स्थिति होगी, उसके द्वारा वो शक्तिशाली अनुभव होंगे। इसीलिए इस जन्म में बचे हुए अब हमारा तन और मन में कभी भी अपवित्रता न हो, बस ये करते करते बाबा समान हम सब भी मन जीते जगत जीत बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।